डॉक्टर डेव मैथ्यूसन, रहस्योद्घाटन, व्याख्यान 29। रहस्योद्घाटन 21, द ब्राइड न्यू जेरूसलम कंट 2024, डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट। यह रहस्योद्घाटन की पुस्तक पर अपने पाठ्यक्रम में डॉक्टर डेव मैथ्यूसन हैं। यह प्रकाशित वाक्य 21 पर व्याख्यान 29 है, द ब्राइड न्यू जेरूसलम जारी है। इसलिए हम न्यू जेरूसलम को जॉन के दृष्टिकोण के अंतिम चरम खंड के हिस्से के रूप में देख रहे हैं, और मैंने सुझाव दिया कि इसे देखने का एक तरीका वास्तव में ध्यान देने योग्य दो बातें हैं। सबसे पहले यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि जॉन शहर के विस्तृत विवरण के बावजूद, जॉन मुझे लगता है इसे मुख्य रूप से लोगों के लिए प्रतीकात्मक के रूप में देखता है, न कि यह कि न्यू क्रिएशन में कोई शाब्दिक भौतिक शहर नहीं होगा या शहरों। यह जॉन का उद्देश्य या उसकी बात नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह नए नियम के अन्य लेखकों की तरह स्वयं लोगों को संदर्भित करने के लिए भवन या मंदिर की कल्पना का उपयोग करता है, और मुझे लगता है कि जॉन यहाँ यही कर रहा है। दूसरी बात अध्याय 21 को विभाजित करने का एक तरीका है जो श्लोक 9 से शुरू होता है। जॉन सबसे पहले शहर की सभी वास्तुशिल्प विशेषताओं का वर्णन करता है, जैसे कि इसकी संरचना और इसके विभिन्न हिस्सों, नींव और द्वार, और फिर भी इसकी माप भी। फिर श्लोक 22 से शुरू करके श्लोक 21 पर समाप्त करते हुए हम देखेंगे कि जॉन इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि वहां कौन है या नए यरूशलेम में कौन रहता है। एक अर्थ में वह पहले से ही हमें बता रहा है कि यह भगवान के लोग हैं जो इमारत के पत्थर हैं और जो मंदिर का निर्माण करते हैं। अधिक विशेष रूप से जॉन हमें श्लोक 22 से शुरू करके बताएगा कि न्यू जेरूसलम मंदिर में कौन रहता है। हमने पहले ही यह भी नोट कर लिया है कि जॉन भगवान के अंतिम समय, अंतिम पूर्ण लोगों को प्रतीकात्मक रूप से चित्रित करने के लिए कई छवियों का विलय कर रहा है। उनमें से एक दुल्हन भाषा है, दूसरी एक शहरी भाषा है, लेकिन एक मंदिर की भाषा भी है। और पहले से ही, और हम देखेंगे कि किसी चीज की तैयारी में और अधिक विस्तार से, जो 22 छंद 1 से 5 में अधिक स्पष्ट हो जाता है, जॉन नई रचना और नए यरूशलेम मंदिर को ईडन गार्डन, स्वर्ग की वापसी या वापसी के रूप में भी चित्रित करता है। उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 से स्वर्ग की बहाली और नवीनीकरण, लेकिन फिर नए यरूशलेम के बारे में मुट्ठी भर विशेषताओं पर लौटते हैं। जहाँ तक इसके श्रृंगार की बात है, शहर का माप है जो एक बार फिर यहेजकेल और शायद जकरयाह से बाहर आता है, दो भी, क्योंकि जकरयाह 2 में शहर को मापा जाता है, जैसा कि हमने पहले कहा था, जबकि यहेजकेल 40 से 48 में, जो कि जॉन द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक मॉडल है, मंदिर को ही मापा जाता है। लेकिन यह जॉन की बात है, वह शहर को एक मंदिर के रूप में चित्रित करना चाहता है, न कि इसमें एक अलग मंदिर होना चाहिए, जैसा कि हम एक क्षण में भी देखेंगे। लेकिन जॉन यहेजकेल की मापने की कल्पना का सहारा लेता है। हमने अध्याय 11 में देखा और पहले दो छंद जिन्हें जॉन ने यहेजकेल 40 से 48 तक एक मंदिर की माप का वर्णन करने के लिए चित्रित किया था, जो संभवतः वहां भी था, मंदिर ने भगवान के लोगों को दर्शाया जो संरक्षित और संरक्षित दोनों थे, फिर भी मंदिर के हिस्से को मापा नहीं गया और अन्य जातियों को बाहर नहीं फेंक दिया गया। यह दर्शाता है कि चर्च को अभी भी उत्पीड़न सहना होगा। अब यूहन्ना भी मंदिर को नापा हुआ देखता है, और प्रश्न यह है कि नाप यहाँ क्या दर्शाता है। संभवतः दो विचार, उनमें से एक यह है, और अध्याय 11 में भी यही मामला था, वहां मापने का मतलब सुरक्षा और संरक्षण था, और शायद यह यहां भी होता है। लेकिन दुश्मनों या उस जैसी किसी चीज से सुरक्षा के संदर्भ में संरक्षण को इंगित करना आवश्यक नहीं है, बल्कि नई सृष्टि में ईश्वर के लोगों के शाश्वत संरक्षण और शाश्वत सुरक्षा को प्रतीकात्मक रूप से चित्रित करना है। दूसरा, मापने की दूसरी विशेषता, मुझे लगता है इस शहर के लोगों की सीमा और परिमाण को प्रदर्शित करना है, स्वयं भगवान के परिपूर्ण लोगों की परिमाण को प्रदर्शित करना है। इसलिए माप का मतलब किसी वास्तुशिल्प खाका को चित्रित करना नहीं है कि किसी तरह हमें एक शाब्दिक शहर की कल्पना या विचार करना चाहिए और फिर यह अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि वहां कितने लोग हो सकते हैं और नए यरूशलेम में वास्तव में कितने लोग रह सकते हैं। भविष्य नहीं, माप प्रतीकात्मक रूप से अनंत काल के लिए भगवान के लोगों की सुरक्षा, साथ ही नई सृष्टि में प्रवेश करने वाले भगवान के लोगों की परिमाण और सीमा दोनों को चित्रित करने के लिए हैं। इसके साथ ही नए यरूशलेम के आयामों पर भी ध्यान दें, जो एक बार फिर मैं तर्क दूंगा, शहर कैसा दिखना चाहिए, इसका शाब्दिक वास्तुशिल्प खाका नहीं दर्शाता है। हमने पहले ही सुझाव दिया है कि शहर संभवतः ईश्वर के लोगों का प्रतीक है। पद 9 और 10 में यूहन्ना ने सुना कि वह दुल्हन यरूशलेम को देखने जा रहा है, उसने क्या देखा और उसने यहाँ क्या दिखाया है और एक शहर के रूप में वर्णन किया है। इसलिए यह शहर परमेश्वर के लोगों का प्रतीक है। इसे शहर के मापों से भी समर्थन मिलता है। ध्यान दें कि सभी माप जो आप यहाँ पढ़ते हैं, शहर स्वयं, इसकी चौड़ाई और लंबाई और चौड़ाई, जिसे हमने होली ऑफ होलीज की ओर इशारा करते हुए कहा था, इसलिए पूरा शहर एक विशाल घन आकार होली ऑफ होलीज है। यह मंदिर के आकार में चौकोर है और यहेजकेल के अध्याय 40 से 48 में अन्य विशेषताएं हैं, यहेजकेल का अंत समय के मंदिर का दर्शन। लेकिन अब जॉन के माप से पता चलता है कि वे सबसे पहले 12,000 स्टेडियम हैं, इसलिए लंबाई और चौड़ाई 12,000 स्टेडियम है और फिर दीवार 144 हाथ है। यह स्पष्ट नहीं है कि दीवार की ऊंचाई इतनी है या नहीं। अधिकांश अनुवाद दीवार की मोटाई का अनुवाद करते हैं। किसी भी मामले में हम देखेंगे कि यह काफी दिलचस्प है कि यदि आप इसका दृश्य अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो दीवार शहर के आकार के अनुपात से बाहर प्रतीत होगी। लेकिन फिलहाल मैं जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं वह संख्याएं हैं। ध्यान दें कि ये दोनों संख्याएं पाठ में उल्लिखित एकमात्र 12 के गुणज हैं। इसलिए पहला 12,000 बस 12 गुना 1,000 होगा, यानी 1,000 एक बड़ी गोल संख्या है। अब 12 का गुना 12,000 लाता है, 12 फिर स्वयं परमेश्वर के लोगों, इसराइल के 12 गोत्रों, 12 प्रेरितों का प्रतीक होना। तो 12,000 यह कहने का एक और तरीका है कि यहाँ युगांतिक परिणति में परमेश्वर के पूर्ण लोगों का परिमाण है। यहाँ भगवान के परिपूर्ण लोग हैं जो संख्या 12 द्वारा दर्शाए गए हैं, 1,000 गुना एक बड़ी संख्या लाते हैं। लेकिन 144 हाथ भी, चाहे वह दीवार की मोटाई हो या ऊंचाई, 144 12 गुना 12 है। इसलिए लेखक संख्या 12 के साथ काम कर रहा है। शहर वास्तव में कैसा दिखेगा इसके कुछ वास्तुशिल्प आयामों को इंगित करने के लिए नहीं, बल्कि संख्या 12 भगवान के लोगों को दर्शाता है। अब उन्होंने उस संख्या के साथ काम किया ताकि परमेश्वर के सुरक्षित परिपूर्ण लोगों को उनकी पूरी महिमा और उनके पूरे आकार में प्रदर्शित किया जा सके जो अब नई सृष्टि में प्रवेश कर रहे हैं। और वैसे स्टेडियम और क्यूबिट में माप पर भी ध्यान दें। एक स्टेडियम लगभग 200 गज या उससे अधिक का होता था और इसलिए शहर दृश्य या यहां तक कि शाब्दिक आयामों में है, यह लगभग 1,500 मील ऊंचा और चौड़ा होगा आदि। इसके अलावा एक हाथ वह माप है जो आप ईजेकील 40 से 48 में पाते हैं। मंदिर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा माप लगभग 18 से 18 था, 20 इंच लंबा। तो लेखक बस अपने समय के सामान्य मापों का उपयोग कर रहा है। लेकिन शहर का विशाल आकार, लगभग 1,500 मील ऊंचा, चौड़ा और लंबा आदि, मुझे लगता है एक बार फिर इस दृष्टि की प्रतीकात्मक प्रकृति का सुझाव देता है कि लेखक एक शाब्दिक शहर की कल्पना नहीं कर रहा है, बल्कि पूर्ण परिपूर्ण लोगों की कल्पना कर रहा है, स्वयं ईश्वर के जो अब नई सृष्टि में प्रवेश करते हैं। और यह शहर के विशाल आयाम के साथ साथ संख्या 12 का भी प्रतीक है। और तथ्य यह है कि 9 में वह पहले से ही दुल्हन की पहचान कर चुका है जो कि लोग हैं शहर के साथ। तो पूरा शहर, फिर पूरे शहर के लोग, आप कह सकते हैं एक पवित्र मंदिर है जहां भगवान निवास करते हैं। जॉन ने यहेजकेल 40 से 47 तक लिया है, विशेषकर यहेजकेल में 48 ईजेकील उन्हें देखता है, लेकिन 40 से 47 में उसकी दृष्टि अंत समय के पुनर्स्थापित मंदिर पर केंद्रित है। अब जॉन उस सभी मंदिर की कल्पना को लेता है और उसे पूरे शहर पर लागू करता है ताकि यह संकेत मिल सके कि शहर एक पवित्र मंदिर है जहां भगवान निवास करते हैं। इसे देखने का दूसरा तरीका यहेजकेल 40 से 48 में भी है, लेकिन निर्गमन कहानी में भी भगवान का अपने लोगों को लाल सागर के माध्यम से, जंगल के माध्यम से मिस्र से बाहर लाने का इरादा था ताकि वह उनके साथ रह सके। एक तंबू और अंततः एक मंदिर। तो उन्हें मिस्र से बाहर लाने का पूरा विचार यह है कि वह उनका परमेश्वर होगा, वे उसके लोग होंगे और वह उनके बीच में एक तंबू में निवास करेगा। तो अब हम देखते हैं कि निर्गमन का लक्ष्य अंततः प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में भी भगवान के अपने मंदिर के लोगों में रहने के साथ पूरा हुआ। एक अन्य विशेषता जिस पर हमने बहुत संक्षेप में प्रकाश डाला वह यह तथ्य है कि पूरा शहर सोने से बना है, और यहाँ तक कि इसे मापने के लिए मापने वाली छड़ी भी सोने से बनी है, जो एक ऐसे शहर को मापने के लिए उपयुक्त है जो मुख्य रूप से सोने से बना है। इसके पीछे संभवतः दो विचार छिपे हुए हैं। उनमें से एक मुझे लगता है स्पष्ट है, दूसरा शायद थोड़ा अधिक सूक्ष्म है। हालांकि 21 और 22 में अन्य स्थान इस संबंध को और अधिक स्पष्ट करते हैं, विशेष रूप से 22 एक से पांच तक। और वह सबसे पहले स्पष्ट संकेत है, मुझे लगता है, क्या शहर को सोने के रूप में चित्रित करने से पूरा शहर सोने से बना है। लेखक इसे पुराने नियम के मंदिर या तंबू के रूप में चित्रित कर रहा है, अर्थात जब आप निर्गमन में वापस जाते हैं और तंबू के निर्माण का विवरण पढ़ते हैं तो एक राजा 5 से 7 तक जाएं और सुलेमान के मंदिर के निर्माण का विवरण पढ़े। मंदिर के निर्माण में सोना एक महत्वपूर्ण धातु थी। हर चीज सोने से बनी थी या हर चीज सोने से मढ़ी हुई थी, इसलिए मंदिर को एक बार फिर सोने के रूप में चित्रित करना यह कोई शाब्दिक वास्तुशिल्प विशेषता नहीं है। लेखक नए यरूशलेम को एक मंदिर, एक पवित्र स्थान और अपने लोगों के साथ भगवान के पवित्र निवास के रूप में चित्रित करना चाहता है। लेकिन इसके अलावा मैं अधिक सूक्ष्मता से यहाँ का सोना उस सोने की भी याद दिला सकता हूँ जो ईडन गार्डन में पाया गया था। यदि आप उत्पत्ति अध्याय 2 पर वापस जाएं, और वैसे कुछ अन्य ग्रंथ, अन्य यहूदी ग्रंथ और सर्वनाश संबंधी ग्रंथ हैं जो सोने और ईडन गार्डन के बीच यह संबंध बनाते हैं। लेकिन अध्याय 2 में जहां हमें बगीचे का वर्णन मिलता है, मैं श्लोक 8 से शुरू करूंगा। अब भगवान ने पूर्व में ईडन में एक बगीचा लगाया था और वहां उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए आदमी को रखा था। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में सुखदायक और खाने में अच्छे होते हैं। बगीचे के मध्य में जीवन का वृक्ष और अच्छाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष था। हम थोड़ी देर बाद उस पाठ पर वापस आएंगे। बगीचे को सींचने वाली एक नदी अदन से बहती थी, और हम उस छवि को प्रकाशित वाक्य के अध्याय 22 में भी देखेंगे। वहां से यह 4 हेडवाटर्स में अलग हो गया। पहले का नाम पीशोन है। यह हवीला की पूरी भूमि से होकर बहती है जहां सोना है, और ध्यान दें कि उस भूमि का सोना अच्छा है, सुगंधित राल और गोमेद भी हैं। तो हवीला बगीचे से निकलने वाली नदी के साथ मिलकर अब सोने और अन्य कीमती रत्नों से जुड़ा हुआ है। तो एक स्तर पर दोनों कीमती गहने और सोना भी जॉन द्वारा प्रस्तुत करने का एक तरीका होगा, या जॉन द्वारा शहर के मंदिर को चित्रित करने का एक तरीका होगा। साथ ही ईडन के बगीचे को भी बहाल किया जाएगा, और इसे अगले भाग में और भी अधिक विस्तार से और वास्तव में थोड़ा सा विकसित किया जाएगा। लेकिन 22 श्लोक 1 से 5 में अदन की वाटिका के साथ संबंध स्पष्ट हैं। लेकिन अगला खंड जो मैं देखना चाहता हूँ, शहर की संरचना, शहर के निर्माण, इसकी विशेषताओं और इसके माप के विवरण का अंतिम खंड श्लोक 19 से 20 में पाया जाता है। वास्तव में इस बिंदु पर हम श्लोक 18 पढ़ना बंद कर दिया, इसलिए मैं श्लोक 19 से शुरू करना चाहता हूँ और अध्याय 21 के अंत तक पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए श्लोक 19 से शुरू करते हुए, शहर की दीवारों की नींव, जिसका उल्लेख श्लोक 14 में किया गया था, शहर की दीवारों की नींव को सजाया गया था हर प्रकार का कीमती पत्थर। पहली नींव जैस्पर, दूसरी नीलमणि, तीसरी चैलेडोनी, चौथी पन्ना, पांचवी सार्डोनिक्स, छठी कारेलियन, सातवीं क्रिसोलाइट, आठवीं बैरल, नौवीं पुखराज, दसवीं क्राइसोप्रेस, ग्यारहवीं जेसिंथ और बारहवीं नीलम थी। 12 द्वार 12 मोती थे, प्रत्येक द्वार एक ही मोती से बना था। नगर की सड़क का विशाल आसन पारदर्शी कांच के समान शुद्ध सोने का था। मैंने नगर में कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान यहोवा और मेमना ही उसका मंदिर हैं। शहर को सूर्य या चंद्रमा की रोशनी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु की महिमा इसे प्रकाश देती है और मेमना इसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसके प्रकाश में चलेंगे और पृथ्वी के राजा अपना वैभव उसमें ले आएंगे। किसी भी दिन उसके द्वार बंद न किए जाएंगे, क्योंकि वहां रात न होगी। राष्ट्रों का गौरव और सम्मान इसमें लाया जाएगा। इसमें कोई अशुद्ध वस्तु कभी प्रवेश न करेगी, न कोई लज्जाजनक या कपटपूर्ण काम करने वाला प्रवेश करेगा, परंतु केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। अब यहाँ आधारशिलाओं की गणना, वर्णन और पहचान विस्तार से की गई है। हमें पद 14 में नीम से परिचित कराया गया था, जहाँ उनकी पहचान 12 प्रेरितों के साथ की गई थी। अब प्रेरितों की नीम को 12 पत्थरों से पहचाना जाता है, और इसलिए मैं यह मानता हूँ कि मुख्य रूप से पत्थर प्रेरितों का प्रतिनिधित्व करते हैं या उन प्रेरितों का प्रतीक हैं जिन्होंने नए यरूशलेम की आधारशिला या नींव बनाई। फिर से यह प्रतीक है कि यह मेमने यीशु मसीह के प्रेरितों पर निर्मित भगवान के पूर्ण लोग हैं। यह एक ऐसा शहर है जो यीशु मसीह के व्यक्तित्व पर केंद्रित है, एक बहुराष्ट्रीय शहर जो मेमने के प्रेरितों पर बनाया गया है, जो यीशु मसीह का चर्च है। अब सवाल यह है कि यूहन्ना संस्थापक प्रेरितों का वर्णन करने के लिए इतनी दूर तक क्यों जाता है? वह उन पत्थरों को गिनने के लिए इतनी हद तक क्यों जाता है जो 12 नींवों से संबंधित हैं या बनाते हैं? 12 पत्थर क्या दर्शाते या सुझाव देते हैं? और मैं आपको सुझाव दूंगा कि मुट्ठी भर प्रशंसनीय विचार हैं, और यह सोचने की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है कि जॉन इनमें से केवल एक का इरादा रखता है। यह संभव है, और मुझे लगता है कि बहुत संभावना है कि जॉन एक ऐसी छवि का उपयोग कर रहा है जो अपने साथ लाए गए एक से अधिक विचारों से मेल खाती है। हम देखेंगे कि जॉन एक ऐसी छवि का उपयोग कर रहा है जो पुराने नियम और अन्य यहूदी साहित्य और सर्वनाशी साहित्य में भी इसके उपयोग के साथ कई जुड़ाव रखती है। सबसे पहले मुझे लगता है कि सबसे स्पष्ट बात यह है कि पत्थर केवल शहर की सुंदरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह इसे वैभवशाली स्थान के रूप में चित्रित करता है, यह इसे पवित्रता के स्थान के रूप में चित्रित करता है, यह इसे लागत के स्थान के रूप में चित्रित करता है, कुछ ऐसा जो महंगा और मूल्यवान है, यह इसे एक ऐसे स्थान के रूप में चित्रित करता है जो भगवान की महिमा को दर्शाता है। ध्यान दे, पहला पत्थर जैस्पर है। पत्थरों का उद्देश्य केवल एक स्तर पर और एक स्पष्ट स्तर पर शहर की सुंदरता और उस स्थान के वैभव को चित्रित करना है जहां भगवान रहते हैं। यह भगवान की महिमा को दर्शाता है। इन 12 पत्थरों का दूसरा कार्य, साथ ही कुछ अन्य पत्थर की कल्पना जो हमने पहले कुछ छंदों में देखी थी और सुना, यह है कि पत्थर स्पष्ट रूप से यरूशलेम और बेबीलोन के बीच अंतर को और अधिक उजागर करने का कार्य करते हैं। अर्थात बेबीलोन एक ऐसी जगह थी जिसका वर्णन किया गया था अध्याय 17 श्लोक 3 में। बेबीलोन की वेश्या को उसके परिधान में सजे हुए बताया गया था, जो सोने और चांदी और सभी प्रकार के कीमती पत्थरों से बना था। अब आप नए यरूशलेम को पत्थरों, बहुमूल्य रत्नों और सोने से सजा हुआ पाते हैं, जिससे एक बिल्कुल विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है। यह संभवतः अध्याय 18 और श्लोक 12 से भी भिन्न है, जहां सोना, चांदी और कीमती पत्थर उस माल का हिस्सा थे जिसे रोम महत्व देता था और आयात करता था। तो इसके विपरीत यह होगा कि रोम ने अपने स्वयं के उपयोग और अपने स्वार्थी उपयोग के लिए जिसका शोषण और विकृत किया, अब नया यरूशलेम अब प्रतिनिधित्व के रूप में या भगवान की महिमा के प्रतिबिंब के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक बार और प्रदर्शित करने के लिए मुझे लगता है कि नया यरूशलेम रोम की अर्थव्यवस्था में भाग लेने में विफलता और रोम की विलासिता में भाग लेने में विफलता के लिए भगवान के लोगों द्वारा किए गए किसी भी बलिदान की भरपाई करता है। इस बात को त्याग कर कि पीड़ा की हद तक भी दो चर्चों स्मिरना और फिलाडेल्फिया को याद रखें, जो सकारात्मक मूल्यांकन प्राप्त करते हैं, वे गरीब हैं और वे रोम के हाथों पीड़ित हैं, उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। अब मुझे लगता है कि ये गहने यहाँ नए यरूशलेम में एक स्तर पर हैं, वही गहने जो बेबीलोन की वेश्या के दर्शन में दिखाई दिए थे, अब यह प्रदर्शित करने के लिए यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि यह संतों द्वारा भाग लेने से इनकार करके किए गए त्याग से कहीं अधिक है और इसकी भरपाई करता है। रोमन विलासिता और उनकी मूर्ति पूजक ईश्वर विहीन प्रथाओं और उनके वाणिज्य में भाग लेने से इनकार करना। तीसरा संघ वह है जिसे हम पहले ही देख चुके हैं और वह यशाया अध्याय 54 श्लोक 11 और 12 है, जो यरूशलेम एक नए यरूशलेम की बहाली को चित्रित करता है। इसमें नए यरूशलेम शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन यह भविष्य में नए यरूशलेम की बहाली को बहुमूल्य रत्नों के संदर्भ में चित्रित करता है, जहां यह यरूशलेम के विभिन्न हिस्सों, द्वारों, नींबों को जोड़ता है और यह नींब को एक विशेष रत्न से जोड़ता है। नए यरूशलेम को इन सभी कीमती पत्थरों से बना चित्रित करना एक और तरीका है, जिससे जॉन सुझाव देता है कि यह पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं में अपेक्षित नए यरूशलेम की अंतिम समय की बहाली की पूर्ति है। तो पत्थर अंत समय के युगांत शास्त्रीय पुनर्स्थापन का सुझाव देंगे। चौथा कार्य जो मुझे लगता है कि अन्य कार्यों की तरह ही महत्वपूर्ण है, वह यह है कि ये पत्थर शहर को एक मंदिर के रूप में और भगवान के लोगों को मंदिर में सेवा करने वाले पुजारी के रूप में उजागर करते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ के पत्थर, मुझे लगता है, स्पष्ट रूप से उस पत्थर का प्रतिनिधित्व करते हैं, महायाजक की छाती पर 12 पत्थर, और इसलिए यह मंदिर की थीम को जारी रखता है। यह नए यरूशलेम को एक मंदिर के रूप में चित्रित करता है और यह भगवान के लोगों को पुजारी के रूप में चित्रित करता है। यदि आप निर्गमन अध्याय 28 और श्लोक 15 से 21 की ओर मुड़ते हैं, तो आपको उस कवच का वर्णन मिलता है जिसे तंबू में महायाजक द्वारा पहना जाना था। 12 पत्थरों में से प्रत्येक इसराइल की 12 जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए था। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ वे 12 प्रेरितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए नहीं कि प्रेरितों ने इसराइल को रखा है, बल्कि इसलिए कि लेखक फिर से इस बात पर जोर देना चाहता है कि इसमें केवल इसराइल ही नहीं है, बल्कि अब नए लोगों के रूप में यीशु मसीह के आसपास केंद्रित इसराइल के साथ सभी राष्ट्र शामिल हैं। भगवान की तो अब ब्रेस्टप्लेट में पत्थर, क्योंकि वे नीम से जुड़े हुए हैं, हमने देखा कि नीम प्रेरितों से जुड़ी हुई थी। तो इसका मतलब यह नहीं है कि प्रेरित इसराइल के गोत्रों को भूल जाएं। लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है कि नए नियम में प्रेरितों पर आधारित चर्च है, जो हर जनजाति, भाषा और भाषा के लोगों से बना एक बहुराष्ट्रीय, बहुसांस्कृतिक समुदाय है। लेकिन निर्गमन 28 और महायाजक की छाती पर लगे पत्थर अंततः इसके पीछे हैं। पत्थर 12 जनजातियों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करते हैं और अब संस्थापक सदस्य यीशु मसीह के चर्च के प्रेरितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो यहूदी और गैर यहूदी दोनों से मिलकर भगवान के एक नए लोग बन गए हैं। यह भी ध्यान दें कि इस पाठ के अनुसार यहेजकेल या निर्गमन 28 के अनुसार कवच एक वर्ग के आकार में था, जो शहर का ही आकार है। जॉन की दृष्टि में न्यू जेरूसलम को पहले से ही एक वर्ग के रूप में वर्णित किया गया था। तो पूरा शहर और भगवान के लोग सभी पुजारी के रूप में कार्य करते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान एक और दिलचस्प पाठ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें लिंक पत्थरों को भी जोड़ता है, और यह एक अतिरिक्त सुविधा हो सकती है। मैं इसे महायाजक की छाती के नीचे रखूंगा, लेकिन यह पत्थरों का एक अतिरिक्त अर्थ या अतिरिक्त जुड़ाव हो सकता है। और यहेजकेल अध्याय 28 में टायर शहर के संबंध में यहेजकेल की भविष्यवाणियों में हमने देखा है कि जॉन ने रोम की अर्थव्यवस्था और इसके स्वसेवारत वाणिज्य और विलासिता और धन की लालसा की आलोचना करने के लिए कहीं और इसका उपयोग किया है। अब अध्याय 28 में श्लोक 12 से शुरू करते हुए, दरअसल मैं श्लोक 13 से शुरू करूंगा। ऐसा लगता है कि लेखक सोर की तुलना उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 और 3 में आदम के पतन की स्थिति से कर रहा है। ध्यान दें कि वह श्लोक 13 में कैसे वर्णन करता है, आप ईडन ईश्वर के बगीचे में थे, हर कीमती पत्थर ने आपको सजाया। माणिक, पुखराज, पन्ना, क्रिसोलाइट, गोमेद, जैस्पर, नीलम, फिरोजा और बेरिल, आपकी सेटिंग्स और माउंटिंग सोने से बनी थीं। जिस दिन तुम्हें बनाया गया उसी दिन वे तैयार किए गए थे। तुम्हें संरक्षक करूब के रूप में अभिषिक्त किया गया था, इसलिए मैंने तुम्हें ठहराया। आप परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर थे, आप उग्र पत्थरों के बीच चले। तो मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि एडम को यहां बगीचे में एक पुजारी के रूप में चित्रित किया जा रहा है, जिसने महायाजक की छाती पर 12 पत्थर पहने थे। अब विशेष रूप से जब आप हिब्रू पाठ और ग्रीक पाठ की तुलना करते हैं, तो इससे संबंधित मुद्दे होते हैं कि वास्तव में यह निश्चित नहीं है कि ये सभी पत्थर क्या हैं। मुझे लगता है कि ग्रंथ आपको उनके उचित अंग्रेजी अनुवाद देते हैं, लेकिन मुझे इस बारे में विस्तार से बताने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि वास्तव में ये पत्थर क्या थे, और जहां तक लोगों को पत्थरों के बारे में पता होता, लेखक ने क्या कल्पना की थी। मुझे समग्र संघों में अधिक रुचि है, और यहां जो दिलचस्प है वह यह है कि महायाजक के ब्रेस्टप्लेट के पत्थर एडम और ईडन गार्डन से जुड़े हुए हैं। और चूंकि ईजेकील 27 और 28 ने पहले से ही एक भूमिका निभाई है, साथ ही ईजेकील की पूरी किताब पूरे रहस्योद्घाटन में जॉन की दृष्टि के लिए एक मॉडल प्रदान करती है, जहां वह लगभग क्रम में इसका पालन करता है, यह अत्यधिक संभावना है कि जॉन न केवल निर्गमन 28 को चित्रित कर रहा है, बल्कि यहेजकेल 28 भी ध्यान में है, जो तब पत्थरों को आदम और अदन के बगीचे दोनों से जोड़ देगा। वास्तव में अन्य ग्रंथ, विशेष रूप से सर्वनाश संबंधी ग्रंथ, ईडन गार्डन को एक मंदिर के रूप में चित्रित करते हैं, जहां भगवान की महिमा, एडम ने एक पुजारी के रूप में कार्य किया और भगवान की महिमा ने गार्डन को भर दिया। एक दिलचस्प पाठ किसी अन्य पुस्तक से है, जिसके साथ हनोक का नाम जुड़ा हुआ है, जिसे तीसरा हनोक कहा जाता है। यह 3 हनोक अध्याय 5 है, जो श्लोक 1 से शुरू होता है। उस दिन से जब पवित्र व्यक्ति ने धन्य हो, पहले आदमी को बगीचे से निकाल दिया, तब से शकीना जीवन के वृक्ष के नीचे एक करूब पर निवास करती थी। सेवा करने वाले देवदूत एकत्रित होकर सारी पृथ्वी पर उसकी इच्छा को क्रियान्वित करने के लिए टोलियों और टोलियों में स्वर्ग से नीचे आते थे। उनकी पीढ़ी का पहला आदमी अदन की वाटिका के द्वार पर रहता था ताकि वे शकीना की उज्ज्वल छवि या शकीना की चमक को देख सकें, जो दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक फैलती थी। मैं यहीं रुकूंगा, लेकिन इस पाठ और अन्य ग्रंथों में ईडन गार्डन को एक मंदिर के रूप में चित्रित किया गया है जहां भगवान की महिमा और उनकी उपस्थिति रहती है, जैसा कि मंदिर में तंबू में हुआ था। मुझे लगता है कि अन्य ग्रंथ यह स्पष्ट करते हैं कि एडम एक पुजारी के रूप में कार्य करता था। निश्चित रूप से यहेजकेल 28 एडम के पुरोहित संघों को प्रदर्शित करता है जो बगीचे में कवच पहनता है और जो महायाजक का कवच पहनता है, ईडन गार्डन में एक पुजारी के रूप में कार्य करता है। वास्तव में दिलचस्प बात यह है कि यदि आप इसे पढ़ने में रुचि रखते हैं तो एक पुस्तक को स्यूडोफिलो कहा जाता है, लेकिन मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। लेकिन स्यूडोफिलो में एक परंपरा यह है कि ब्रेस्टप्लेट पर लगे पत्थर वास्तव में ईडन गार्डन से लिए गए थे और फिर उन्हें अंततः अंतिम समय तक संदूक में रखा जाता है जब वे प्रकट नहीं होंगे, और इसलिए एक बार फिर ईडन गार्डन के साथ पत्थरों के संबंध पर ध्यान दें, साथ ही युगांत शास्त्रीय निहितार्थों पर भी ध्यान दें कि वे छिपे हुए हैं और भविष्य में प्रकट होंगे। अब पत्थर अंततः जॉन की दृष्टि में प्रकट हो गए हैं। बाइबल के बाहर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक और दिलचस्प पाठ जिस पर हम पहले ही ध्यान आकर्षित कर चुके हैं, और वह कुमरान समुदाय से मृत सागर स्क्रॉल में यशायाह पर टिप्पणी है जो कुमरान ग्रंथों में से एक है। और यशायाह की एक टिप्पणी में दिलचस्प ढंग से, और हमने यशायाह 54 पर यशायाह टिप्पणी में कहा, कुमरान की उस टिप्पणी के लेखक ने पुनर्स्थापित यरूशलेम द्वारों, दीवारों और नीम का वर्णन किया है और वह समान है उनमें। वह पत्थरों की तुलना कुमरान समुदाय के संस्थापक सदस्यों से करता है, जैसे कि वह अपने समुदाय में अपने समुदाय की स्थापना के लिए औचित्य देखता है। यशायाह 54 में इसकी भविष्यवाणी की गई है, और इसलिए हमने जो देखा वह दिलचस्प था कि लेखक हैं कुमरान पाठ में यशायाह 54 पर टिप्पणी ने नीम और अन्य पत्थरों को समुदाय के संस्थापक सदस्यों के बराबर बताया। दिलचस्प बात यह भी है कि यशायाह 54 के पत्थरों में से एक और समूहों में से एक उरीम और तुम्मीम से भी जुड़ा है, जो महायाजक की छाती पर दो पत्थर थे, और इसलिए आपके पास कुमरान पाठ में यशायाह 54 को लेने और इसे महायाजक के कवच पर लगे पत्थरों के साथ जोड़ने का एक उदाहरण है जो बिल्कुल जॉन करता है। यशायाह 54 पत्थरों की नीम को चित्रित करता है जो प्राथमिक पाठ है जिसका उपयोग जॉन पत्थरों के संदर्भ में नए यरूशलेम को चित्रित करने के लिए करता है। अब कुमरान पाठ के लेखक द्वारा उठाए गए एक समान कदम में जॉन अब भी, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उसने इसे पढ़ा है, लेकिन कुछ इसी तरह से जॉन भी नीम के साथ यशायाह 54 की एक विशेषता के साथ ब्रेस्टप्लेट पर पत्थरों को जोड़ता है, यशायाह 54 के पत्थर। तो फिर नए यरूशलेम को चपरास के पत्थरों से जोड़कर एक मंदिर के रूप में चित्रित किया गया है जो यशायाह 54 से जुड़े हुए हैं, और वे पत्थर जो नए यरूशलेम को बनाते हैं, जो फिर से जॉन ने किया है, स्वयं लोगों को संदर्भित करने के लिए रूपक के रूप में लिया जाता है, ताकि अंततः वह नए यरूशलेम को भगवान के निवास स्थान के रूप में देखे जहां भगवान के लोग पुजारी हैं, जो अब नई रचना में नए मंदिर यरूशलेम में भगवान की पूजा और सेवा करते हैं। मंदिर की कल्पना और ईडन गार्डन की कल्पना के अलावा पांचवां संबंध यह है कि हमें इन पत्थरों को दुल्हन की सजावट के हिस्से के रूप में भी समझना चाहिए, अर्थात हमें इन्हें विवाह संबंधी कल्पना के भाग के रूप में लेना चाहिए जिसका उपयोग जॉन परमेश्वर के लोगों को चित्रित करने के लिए कर रहा है। हम अध्याय 21 और श्लोक 2 में पहले ही देख चुके हैं कि जॉन नए यरूशलेम को अपने पति के लिए दुल्हन के रूप में सजकर स्वर्ग से बाहर आते हुए देखता है, जो पुराने नियम की भाषा पर आधारित है। तो अब ये गहने, ये कीमती पत्थर जो नींव बनाते हैं, उन्हें दुल्हन की सजावट के हिस्से के रूप में भी देखा जा सकता है, जहां अब उसे अपनी सभी युगांतिक महिमा में दुल्हन के रूप में तैयार किया जाता है और अपने पति जो यीशु मसीह है को प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि कई संघ जो शहर की सुंदरता का प्रतिनिधित्व करने से शुरू करते हैं, शहर की महिमा एक ऐसी जगह के रूप में है जो भगवान की महिमा को दर्शाती है। यह बेबीलोन रोम के साथ विरोधाभास है। यह उनके पास जो कुछ भी हो सकता है उसकी भरपाई करता है। भाग लेने से इनकार करके बेबीलोन रोम के हाथों बलिदान दिया गया। यह युगांत शास्त्रीय पुनर्स्थापन का सुझाव देता है, जिसमें पत्थर एक पुनर्निर्मित यरूशलेम से जुड़े हुए हैं। यहाँ पत्थरों की उपस्थिति युगांत शास्त्रीय अंतस्मय की पुनर्स्थापना का सुझाव देती है। यह भगवान के लोगों की पुरोहिती प्रकृति का सुझाव देती है। भगवान के निवास स्थान के रूप में शहर की मंदिर प्रकृति, जहां हर कोई अब महायाजक का कवच पहनता है और वे पुजारी के रूप में कार्य करते हैं जो भगवान की सेवा और पूजा करते हैं, और इसके साथ ही ईडन गार्डन और पैराडाइज एसोसिएशन भी चलते हैं, और फिर अंत में यह दुल्हन की सजावट का हिस्सा है। अध्याय में एक और दिलचस्प विशेषता, मुझे क्षमा करें, नंबर 4 पर वापस, ब्रेस्टप्लेट के साथ पुरोहिती संबंध। यह दिलचस्प है कि श्लोक 18 में ठीक पहले और ठीक बाद में और श्लोक 21 में कीमती पत्थरों के विवरण को कोष्ठक में रखना एक है, शहर के श्रृंगार के रूप में सोने का उल्लेख जो एक बार फिर निर्गमन 28 में महायाजक के कवच के वर्णन और अन्य जगहों पर जहां वे सोने में जड़े हुए हैं को प्रतिबिंबित करता है, और इसलिए शायद कवच की कल्पना के साथ एक और संबंध है। अब शहर की एक और विशेषता, इससे पहले कि हम इसके निवासियों पर नजर डालें जो इसमें रहते हैं और जो इसमें प्रवेश करते हैं, हालांकि हम पहले से ही शहर की वास्तुकला, सुविधाओं और श्रृंगार के माध्यम से इसके निवासियों का वर्णन कर रहे हैं जो प्रतीकात्मक रूप से चित्रित करने के लिए है परमेश्वर के लोग, लेकिन एक अन्य विशेषता श्लोक 21 में सड़क है। अधिकांश ग्रीको रोमन शहरों में एक मुख्य सड़क या एक रास्ता रहा होगा जो शहर के केंद्र से नीचे तक जाता था, और आमतौर पर यही वह जगह होती है जहां सभी गतिविधियां होती हैं और वाणिज्य और इस तरह की चीजें हुई। यहां सोने से बनी सड़क के संदर्भ में शायद जॉन के मन में यही है, और यहीं पर हमें सोने से बनी सड़क की कल्पना मिलती है। हालांकि हम शायद इसे उस छोटेपन के साथ लेने के लिए नहीं बने हैं जिसके साथ अक्सर इसका व्यवहार किया जाता है। फिर से सोना भगवान के निवास स्थान के रूप में इसका प्रतीक है, और एक सड़क वाणिज्य और आने जाने के लिए किसी भी शहर की एक सामान्य विशेषता है। हालांकि यह सड़क के अतिरिक्त या शायद एक विकल्प के रूप में यहां शब्द एक विस्तृत स्थान या प्लाजा का भी सुझाव दे सकता है जो एक विशिष्ट ग्रीको रोमन शहर में रहा होगा। यह दिलचस्प है कि प्रकाशित वाक्य 21 के नए यरूशलेम में कुछ अन्य विशेषताएं प्रतीत होती हैं जो पहली शताब्दी से पहले और उसके दौरान एक आदर्श ग्रीको रोमन शहर की सामान्य अवधारणाओं को दर्शाती हैं। उनमें से एक वह सड़क या रास्ता था जो शहर से होकर गुजरता था। दूसरा शहर का चौकोर आकार और समरूपता थी जो ग्रीको रोमन शहर की एक विशेषता थी। दूसरा उपाय यह था कि पानी की अच्छी आपूर्ति हो, जिसे आप अध्याय 22 में पाते हैं, नदी का प्रवाह। तो यह भी संभव है कि यद्यपि जॉन मुख्य रूप से पुराने नियम के ग्रंथों और यहाँ तक कि अन्य यहूदी सर्वनाशी ग्रंथों से अपनी दृष्टि का निर्माण कर रहा है, उसी समय जॉन एक ऐसे शहर की कल्पना का निर्माण कर रहा है जो एक ही समय में आदर्श ग्रीको जैसा होगा, रोमन शहर। और यह तर्कसंगत होगा क्योंकि अध्याय 2 और 3 में वह जिन चर्चों को संबोधित कर रहा है वे सभी ग्रीको रोमन शहरों, एशिया माइनर के प्रांतों और रोम के प्रांतों में रहते हैं। अब ऐसा लगता है जैसे जॉन कहना चाहता है कि आदर्श ग्रीको रोमन शहर की सच्ची पूर्ति रोम के किसी भी शहर में नहीं मिलती है, बल्कि केवल नए यरूशलेम में ही साकार होगी, जैसा कि पुराने नियम के भविष्यवाणी ग्रंथों में अनुमान लगाया गया था। और इसलिए जॉन का नया यरूशलेम पुराने नियम की अपेक्षाओं की पूर्ति है। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने पुनर्स्थापित यरूशलेम मंदिर में इसकी आशा की थी। साथ ही यह भी हो सकता है कि जॉन इसे उन आदर्शों की पूर्ति के रूप में देखते हों जिन्हें लोग एक आदर्श ग्रीको रोमन शहर से संबंधित मानते थे। और अब जॉन का शहर उससे भी आगे निकल गया है। जॉन चाहते हैं कि उनके पाठक अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को किसी ऐसे शहर या ग्रीको रोमन शहर में न पाए जहां से वे आते हैं, निश्चित रूप से रोम में नहीं, बल्कि केवल जॉन के दृष्टिकोण के नए यरूशलेम में। अब श्लोक 22 से 27 तक आगे बढ़ते हैं, जहां हमें शहर के निवासियों से परिचित कराया जाता है। हम पहले ही नोट कर चुके हैं कि एक स्तर पर पत्थर और शहर ही दुल्हन हैं। तो हम पहले से ही निवासियों को मेमने की दुल्हन के रूप में भगवान के लोगों के संदर्भ में परिचित करा चुके हैं, जो अब नया यरूशलेम बना रहा है। लेकिन हमें यहां तीन अन्य आवासों से परिचित कराया गया है। उनमें से दो स्पष्ट हैं और उनमें से एक स्वयं ईश्वर है, दूसरा मेमना है और तीसरा है राष्ट्र। अब सबसे पहले श्लोक 22 बल्कि चौंकाने वाला है, कम से कम अधिकांश लोगों के लिए जो इससे परिचित हैं, उदाहरण के लिए इजेकील 40 से 48 तक। सर्वनाश पाठ, यहूदी सर्वनाश पाठ से परिचित अधिकांश लोग श्लोक 22 से चौंक गए होंगे, जहां जॉन कहते हैं, मैंने कोई मंदिर नहीं देखा। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हालांकि जॉन इस पर जोर नहीं देता है, यह लगभग वैसा ही है जैसे जॉन यहेजकेल की दृष्टि की तरह, जहां वह मंदिर के माप और दर्शन में अंदर की ओर बढ़ता है, जॉन भी अंदर की ओर बढ़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी लगभग देख सकता है कि जॉन अब शहर के केंद्र में है। वह शहर के अंदर है, शहर के केंद्र में, और वह कहता है, मैंने कोई मंदिर नहीं देखा। यह वह जगह है जहां आप शहर के अंदर एक मंदिर देखने की उम्मीद करेंगे, चाहे वह ग्रीको रोमन शहर हो या इजेकील 40 से 48 और अन्य यहूदी सर्वनाशी ग्रंथों के अनुसार पुनर्स्थापित यरूशलेम हो। लगभग सभी यहूदी सर्वनाशकारी ग्रंथों में यरूशलेम की बहाली और भगवान के लोगों की बहाली के हिस्से के रूप में एक मंदिर शामिल है। अब इसके विपरीत जॉन कहते हैं, मैंने कोई मंदिर नहीं देखा। जॉन कहते हैं, ठीक वहीं जहां आप उनसे एक मंदिर देखने की उम्मीद कर सकते हैं, मैंने कोई मंदिर नहीं देखा। और इसका कारण यह है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब भगवान और मेमना ही इसके मंदिर हैं। दूसरे शब्दों में, भगवान और मेमना लोगों के बीच में रहते हैं, एक भौतिक मंदिर, एक अलग भौतिक मंदिर बनाते हैं, जो पूरी तरह से अनावश्यक है। अब एक स्तर पर यह कहना गलत है कि वहां कोई मंदिर था ही नहीं, क्योंकि पूरा न्यू जेरूसलम एक मंदिर है। जॉन ने यहेजकेल 40 से 47 मंदिर की भाषा ली है और इसे पूरे शहर में लागू किया है। तो एक तरह से वहां एक मंदिर है, लेकिन पूरा शहर एक मंदिर है। जॉन जो कह रहा है वह शहर के भीतर है, कोई अलग मंदिर नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर हैं। तो पूरा शहर एक मंदिर है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान और मेमना मंदिर हैं। परमेश्वर और मेमना उनके बीच में रहते हैं। इसका कारण यह है कि जिस चीज के लिए इज़राइल के इतिहास में सबसे पहले एक मंदिर की आवश्यकता थी, वही चीज अब खत्म हो गई है। पहली सृष्टि के भाग के रूप में पाप और बुराई जिसने ईश्वर और मानवता के बीच सीधे संपर्क को रोक दिया था, पाप और बुराई जिसने ईश्वर के लिए मंदिर के अलावा खुले तौर पर रहना असंभव बना दिया था, अब हटा दिया गया है। विशेष रूप से अध्याय 19 और 20 से शुरू करते हुए हमने न्याय के दृश्यों की एक विस्तृत श्रृंखला में सभी पापों और सभी बुराइयों को दूर होते देखा है। अब जबकि पुरानी सृष्टि सहित बुराई और पाप से भ्रष्ट सब कुछ हटा दिया गया है और पाप और बुराई हटा दी गई है, अब भगवान सीधे अपने लोगों के साथ रह सकते हैं। इसलिए मंदिर की कल्पना पूरे शहर पर लागू होती है, क्योंकि भगवान और मेमना इसके मंदिर हैं। भगवान और मेमना किसी भौतिक मंदिर की आवश्यकता के बिना सीधे अपने लोगों के बीच में रहते हैं, क्योंकि जिन चीजों के लिए सबसे पहले मंदिर की आवश्यकता थी, सृष्टि में पाप और बुराई, वे सभी अब हटा दी गई हैं। अब इस वजह से, क्योंकि भगवान और मेमना शहर के केंद्र में हैं और मंदिर हैं, और भगवान की उपस्थिति अब पूरे शहर और पूरी नई सृष्टि के साथ व्यापक है, जॉन कह सकते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है सूरज या चांद। क्यों? नंबर एक, क्योंकि कीमती पत्थर प्रकाश देते हैं, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण रूप से जॉन हमें बताता है क्योंकि भगवान और मेमना इसका प्रकाश हैं। हम शायद दीपक की छवि को मंदिर की छवि के रूप में समझेंगे। परमेश्वर और मेमना उसकी ज्योति हैं। मेमना इसका दीपक है ताकि एक बार फिर यह एक जगह हो, यह एक मंदिर, एक अभयारण्य हो जो पूरी तरह से भगवान की उपस्थिति से प्रेरित हो। लेकिन अब भगवान की उपस्थिति शहर के एक कोने में एक भौतिक मंदिर तक सीमित नहीं है। पूरा शहर नया यरूशलम, और मैं सुझाव दूंगा कि पूरी नई सृष्टि अब एक पवित्र मंदिर है जहां भगवान निवास करते हैं। मुझे लगता है कि जॉन बहुत स्पष्ट रूप से चित्र बना रहा है, जैसा कि हमने पहले ही नोट किया है कि यदि आपने पुराने नियम के सभी संकेतों को हटा दिया तो आपके पास इस दृष्टि में बहुत कुछ नहीं बचेगा। लेकिन यशायाह ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह दिलचस्प है कि यहेजकेल यशायाह 54 के साथ दृष्टि के पहले भाग पर हावी रहा है, लेकिन अब जॉन मुख्य रूप से यशायाह के पाठ पर आधारित है, विशेषकर 60-63 पर। फिर अध्याय 22 में जॉन अपने ईजेकील मॉडल ईजेकील अध्याय 47 पर वापस लौटने जा रहा है, लेकिन अध्याय 60 और श्लोक 19 में जॉन अध्याय 60 में कहते हैं यशायाह भगवान के लोगों की अंतिम समय की बहाली के संदर्भ में है। यशायाह कहता है फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला न होगा और न चंद्रमा का तेज तुझ पर पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तेरी सदा की ज्योति ठहरेगा और तेरा परमेश्वर तेरी महिमा ठहरेगा। तो यशायाह 60 यहाँ जॉन को यह कहने के लिए मॉडल प्रदान करता है कि नई सृष्टि में चमकने या प्रकाश प्रदान करने के लिए सूर्य या चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान और मेमना अब इसकी रोशनी है। ध्यान दें कि जॉन प्रकाश देने के साथ साथ मेमने को भी जोड़ता है, परंतु यह नगर परमेश्वर की महिमा, उसके महिमामय वैभव और उसकी उपस्थिति से इतना परिपूर्ण है कि यशायाह 60 की पूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रकाश की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप यशायाह 60 के पहले 3 छंदों पर वापस जाते हैं, उठो चमको क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है और प्रभु की महिमा तुम्हारे ऊपर चमक रही है। देख पृथ्वी पर अंधियारा छा गया है और राज्य देश के लोगों पर घना अंधकार छा गया है, परंतु यहोवा तुम्हारे ऊपर उदय होगा और उसका तेज तुम्हारे ऊपर प्रकट होगा। 3 लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु यह प्रदर्शित करना है कि यह एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान की उपस्थिति अब पूरे शहर, लोगों और वास्तव में पूरे नए यरूशलेम के साथ एक पवित्र मंदिर के रूप में व्यापक है जहां भगवान रहते हैं। यह दिलचस्प है कि जॉन आगे बढ़ता है और इस दर्शन का भी वर्णन करता है श्लोक 25 में, क्योंकि और ध्यान देता है कि ये एक दूसरे पर कैसे निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले भगवान और मेमना पूरे शहर, लोगों और मंदिर को भर देते हैं, और क्योंकि वे हैं मंदिर, अतिरिक्त मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसलिए भी कि वे एक मंदिर हैं, क्योंकि भगवान की महिमा पूरे शहर में भर जाती है, अब सूर्य या चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा पद 25 में इस कारण उसके फाटक किसी दिन बंद न किए जाएंगे और न रात होगी, कारण स्पष्ट प्रतीत होता है कि रात में द्वार बंद करने का उद्देश्य अवांछित आगंतुकों या शत्रुओं को शहर से बाहर रखना था। परंतु अब रात न होने के कारण फाटकों को बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर की महिमा नगर में भर गई है। युगांतिक परिणति में परमेश्वर के लोगों की शाश्वत सुरक्षा का एक और प्रतीकात्मक चित्रण। यह भी दिलचस्प है कि आपके पास शहर के चारों ओर एक दीवार है, लेकिन उस पर कोई द्वार नहीं है, या कम से कम वे कभी बंद नहीं होते हैं। तो यह लगभग वैसा ही है जैसे दीवारें अनावश्यक हों। लेकिन शायद हमें इसका बहुत अधिक शाब्दिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए, लेकिन एक बार फिर मुझे लगता है कि दीवारें एक विशिष्ट शहर के हिस्से को इंगित और प्रतीक करती हैं। चाहे यरूशलम हो या कोई अन्य पहली सदी का शहर, द्वार बस उसका हिस्सा हैं, शहर, और वे यहाँ परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा का प्रतीक हैं। और वे इतने सुरक्षित हैं कि गेट खुले रह सकते हैं, बिना किसी नुकसान के गेट में प्रवेश करने या किसी ऐसी चीज के प्रवेश करने से जो भगवान के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा या अपवित्र करेगा। प्रकाश तो यहाँ प्राथमिक विषय है, वह प्रकाश जो ईश्वर की गौरवशाली उपस्थिति से आता है, वह प्रकाश जैसा कि आप पुराने नियम में अन्यत्र पाते हैं, विशेष रूप से ईश्वर की उपस्थिति के साथ, प्रकाश ईश्वर की उपस्थिति और उसके लोगों के साथ निवास का प्रतीक है। फिर भी प्रकाश दूसरे तरीके से कार्य करता है, और वह है प्रकाश राष्ट्रों को आकर्षित करने का कार्य करता है। श्लोक 24 पर ध्यान दें, राष्ट्र उसके प्रकाश से चलेंगे और पृथ्वी के राजा उसमें अपना वैभव लाएंगे। श्लोक 26, राष्ट्रों का गौरव और सम्मान इसमें लाया जाएगा। इन दो श्लोकों को संभवतः पहले श्लोक 24 के संदर्भ में समझा जा सकता है, जो यह है कि यह वह प्रकाश है जो राष्ट्रों को आकर्षित करता है, यह वह प्रकाश है जो राष्ट्रों को आकर्षित करता है। और फिर यह तथ्य कि श्लोक 25 में दरवाजे खुले हैं, न केवल सुरक्षा का संकेत देता है और अवांछित आगंतुकों के आने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि राष्ट्रों की महिमा और सम्मान प्राप्त करने के लिए श्लोक 26 के कारण भी द्वार खुले हैं। अब ध्यान देने योग्य पहली बात, और मैं इस बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। ध्यान देने वाली पहली बात यह है कि जॉन एक बार फिर यशायाह के पाठ पर बहुत अधिक निर्भर है। 24 विशेष रूप से यशायाह अध्याय 2 को प्रतिबिंबित करता प्रतीत होता है, जो पुस्तक की शुरुआत में आपके पास यशायाह अध्याय 2 में अंत समय के उद्धार का यह दर्शन या यह कथन है, और श्लोक 2 की शुरुआत अंतिम दिनों में पहाड़ का है। प्रभु का मंदिर राष्ट्रों के बीच प्रधान स्थापित किया जाएगा, वह पहाड़ों से ऊपर उठाया जाएगा और सारी जातियां उसकी ओर प्रवाहित होंगी। और यह वास्तव में पूरे यशायाह में एक महत्वपूर्ण विषय का परिचय देता है। यही एक कारण है कि जॉन इस अंतस्मय के दर्शन में यशायाह पर इतना अधिक ध्यान देता है, क्योंकि यशायाह युगांतकारी मुक्ति में राष्ट्रों के समावेश को चित्रित करता है। यरूशलेम में आकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए राष्ट्रों का आकर्षण, इसलिए सभी राष्ट्र इसकी ओर प्रवाहित होंगे। बहुत से लोग आकर कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर अर्थात इसराइल के परमेश्वर के भवन में चलें। वह हमें अपने मार्ग सिखाएगा ताकि हम उसके मार्गों पर चल सकें। यहोवा का वचन अर्थात व्यवस्था सियोन से और यहोवा का वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह राष्ट्रों के बीच न्याय करेगा और विवादों का निपटारा करेगा। और मैं वहीं रुकूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप प्रभु के मार्गों को सीखने और उसके मार्गों पर चलने के लिए शहर की ओर आने वाले राष्ट्रों की इस छवि को जानें। अब जॉन उस पाठ को प्रतिबिंबित करते हुए कहता है कि राष्ट्र उसके प्रकाश में चलेंगे। मुझे लगता है कि चलने की वह कल्पना यशायाह 2 से आती है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ के राष्ट्र केवल कुछ सहायक भूमिका नहीं निभा रहे हैं, बल्कि राष्ट्र वास्तव में भगवान के लोगों के हिस्से के रूप में आ रहे हैं। यह राष्ट्रों को ईश्वर के लोगों का हिस्सा बनने के लिए परिवर्तित करने का एक दृष्टिकोण है। हम इसी विषय को बाद में यशायाह अध्याय 60 में उस पाठ में देखते हैं जिसे हमने अभी पढ़ा है, जो नए यरूशलेम के साथ प्रकाश को जोड़ता है और भगवान का प्रकाश अब अध्याय 60 में शहर को भर रहा है। हम श्लोक 1 और 2 पढ़ते हैं, लेकिन फिर श्लोक 3 से शुरू करते हैं, यह कहने के बाद कि अंधकार पृथ्वी पर छा गया है, लेकिन प्रभु तुम्हारे ऊपर उठेंगे, उसकी महिमा तुम्हारे ऊपर प्रकट होती है। प्रभु की महिमा अब उनका प्रकाश होगी। अब पद 3 पर ध्यान दें, राष्ट्र तेरे प्रकाश की ओर आएंगे और राजा तेरे भोर के प्रकाश की ओर आएंगे। इसके अलावा श्लोक 5 पर ध्यान दें, फिर आप देखेंगे और दीप्तिमान होंगे, आपका हृदय धड़क उठेगा और खुशी से फूल जाएगा, समुद्र का धन तुम्हारे पास लाया जाएगा, राष्ट्रों का धन तुम्हारे पास आया है। श्लोक 6, ऊँटों के झुंड तेरे देश में आएंगे, मिद्यान और एपा के जवान ऊँट और शेबा के सब ऊँट सोना और लोबान लिए हुए और यहोवा की स्तुति करते हुए आएंगे। और एक आखिरी पाठ श्लोक 11, आपके द्वार हमेशा खुले रहेंगे, वे दिन या रात कभी बंद नहीं होंगे। वह पाठ जिसका उल्लेख यूहन्ना ने इसलिए किया है ताकि लोग आपका धन, उन राष्ट्रों का धन ला सकें जिनका नेतृत्व उनके राजाओं ने विजयी जुलूस में किया था। दूसरे शब्दों में, प्रकाश राष्ट्रों को आकर्षित करने के लिए कार्य करता है और खुले द्वार राष्ट्रों की आमद को प्राप्त करने के लिए होते हैं। यशायाह अध्याय 60 और यशायाह अध्याय 2 की पूर्ति में उनके धन को नए यरूशलेम में लाते हैं। अब यह पाठ आपके समक्ष जो प्रश्न प्रस्तुत करता है, उनमें से एक यह है कि ये राष्ट्र कौन हैं जो अब नए यरूशलेम में आ रहे हैं। यह उन्हें लगभग बाहर होने और अब प्रवेश करने के रूप में चित्रित करता है। ये राष्ट्र कौन हैं और हम उन्हें नए यरूशलेम में प्रवेश करने के बारे में कैसे समझें? वे बाहर कैसे हैं और अब वे स्पष्ट रूप से अंदर कैसे आते हैं? और मेरे द्वारा इसे उठाने का कारण यह है कि जब आप अध्याय 20 के अंत तक पहुंचते हैं तो कोई नहीं बचता है। सभी राष्ट्रों का न्याय किया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम आवश्यक रूप से इसकी कल्पना भी कर सकते हैं। ये उस फैसले से बचे हुए लोग हैं। शायद यह सच है, लेकिन रहस्योद्घाटन इस पर स्पष्ट नहीं है। प्रकाशित वाक्य बस इतना कहता है, सभी राष्ट्र जो युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं, पृथ्वी के सभी राजा और सभी राष्ट्र, हर अंतिम व्यक्ति, दास, स्वतंत्र, जो भी हो, अब भगवान के अंतिम समय के फैसले में नष्ट हो गए हैं। तो श्लोक 20 के अंत में, कोई नहीं बचा है। सभी बुराई, सभी पाप, वे सभी जिन्होंने एक जानवर के साथ अपना भाग्य डाला है, सभी को अब न्याय के व्यापक अंतिम दृश्य में हटा दिया गया है। तो ये राष्ट्र कहां से आते हैं? वे कौन हैं और वे कहां से आते हैं और वे नए यरूशलेम में कैसे प्रवेश करते हैं? मुझे 3 या 4 टिप्पणियां करने दीजिए। आशा है कि इससे हमें इन मुद्दों को सुलझाने में मदद मिलेगी। सबसे पहले, यहां राष्ट्रों का समावेश जोड़ा गया है, मुझे लगता है सिर्फ इसलिए कि जॉन के भ्रम का यह हिस्सा यशायाह 60 है। यशायाह में बहाली के कार्यक्रम का हिस्सा राष्ट्रों का समावेश है। तो जॉन यशायाह पर आकर्षित हो रहा है, इसलिए राष्ट्रों को शामिल करना यशायाह 60 और यशायाह की बाकी किताब तक उसके भ्रम का हिस्सा होने जा रहा है। लेकिन हम देखेंगे कि इससे कहीं अधिक है, क्योंकि राष्ट्रों, हर जनजाति, भाषा और राष्ट्र के लोगों का समावेश अब तक जॉन के सर्वनाश का एक प्रमुख विषय रहा है। तो यह यशायाह 60 के लिए सिर्फ एक भ्रम से अधिक होना चाहिए, लेकिन अगर जॉन यशायाह की पुनर्स्थापना, अंत समय की बहाली की तस्वीर का अनुसरण कर रहा है तो यह स्वाभाविक है कि वह राष्ट्रों को शामिल करेगा, खासकर जब से यह उसके विषय में फिट बैठता है, हर जनजाति और भाषा के लोग। दूसरा अवलोकन यह तथ्य है कि वे यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। इसे बहुत शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए, जैसे कि वे नई रचना के बाहर थे। नई सृष्टि और नए यरूशलेम की स्थापना के बाद अब वे इससे बाहर हैं, और अब हम देखते हैं कि वे अंततः इसमें शामिल हो गए हैं। लेकिन नए यरूशलेम में प्रवेश की यह भाषा शायद यशायाह की भाषा का ही हिस्सा है, और जॉन का इरादा नहीं है कि हम इसे बहुत शाब्दिक रूप से लें, जैसे कि वे किसी बिंदु पर बाहर हैं। नई सृष्टि के आगमन के बाद वे बाहर हैं और अब वे अंदर प्रवेश करते हैं। संभवतः प्रवेश तब होता है जब नया यरूशलेम स्वर्ग से नीचे आता है और बाकी सभी लोग इसमें प्रवेश करते हैं और इसका हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन जॉन को हमें यह बताने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि वे कब अंदर आते हैं या वे बाहर हैं और वे अंदर आते हैं। हमें शायद उस भाषा को सख्त शाब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए, जैसे कि वे नई रचना में कहीं बाहर हैं और वे अंदर प्रवेश करते हैं। या इससे भी बदतर, कुछ का सुझाव है कि ये वे राष्ट्र हैं जिन्हें आग की झील में दंडित किया गया है, और अब उन्हें आग की झील को छोड़ने और नए यरूशलेम में प्रवेश करने की अनुमति है। नहीं, जॉन सिर्फ यशायाह की भाषा का उपयोग कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब यह है कि हम इसे सख्त भौगोलिक शाब्दिकता के साथ लें। लेकिन वह बस यशायाह अध्याय 2 अध्याय 60 की ओर संकेत करना चाहता है। अब मैं जिस प्रश्न से निपटना चाहता हूँ वह यह है कि ये राष्ट्र कौन हैं और वे कहाँ से आए हैं। खास तौर पर तब जब 20 के अंत में सभी देशों का न्याय किया जा चुका है, जाहिर है कोई राष्ट्र नहीं बचा है, पृथ्वी पर कोई राजा नहीं है, कोई राष्ट्र नहीं है। जिन लोगों ने परमेश्वर के लोगों, राष्ट्रों और पृथ्वी के राजाओं का विरोध किया है, यह उन लोगों की भाषा है जो नष्ट हो गए हैं, जिन्हें जानवर के साथ धोखा दिया गया है और जानवर के साथ सांठगांठ की है और जानवर के साथ व्यभिचार किया है। पृथ्वी और राष्ट्रों के राजा यही हैं। और अध्याय 19 और 20 में उनका न्याय किया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया, और 20 के अंत में जाहिर तौर पर कोई नहीं बचा। तो वे राष्ट्र और राजा कौन हैं जो अब नए यरूशलेम की रोशनी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो अब खुले द्वारों से होकर इसमें अपनी महिमा लाने के लिए आते हैं, अपना सामान इसमें योगदान करने के लिए आते हैं, अब आते हैं और इसकी रोशनी में चलते हैं और भगवान की पूजा करो। दूसरे शब्दों में, जाहिरा तौर पर ये वे राष्ट्र हैं जो परिवर्तित हो चुके हैं और अब ईश्वर के युगांतकारी लोगों का हिस्सा हैं और अब नए यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। वे कौन हैं और कहां से आते हैं? अगले भाग में हम इसे सुलझाने की कोशिश में थोड़ा समय बिताएंगे और एक संभावित समाधान, प्रकाशित वाक्य 21 और नए यरूशलेम की इस विशेषता को देखने का एक संभावित तरीका प्रस्तावित करने का प्रयास करेंगे। यह रहस्योद्घाटन की पुस्तक पर अपने पाठ्यक्रम में डॉक्टर डेव मैथ्यूसन हैं। यह प्रकाशित वाक्य 21 पर व्याख्यान 29 है, द ब्राइड न्यू जेरूसलम जारी है।